वैसे दक्ष प्रजापति की दृष्टि से यह दोष है, परंतु सारस्वत देवी सरस्वती इसका अर्थ बदल रही है। ये बात सही है, शिवजी पागलों के समान घूमते हैं, परंतु ये शिवजी का दोष नहीं, ये तो शिवजी का महान गुण है। क्यों? क्योंकि शिवजी जो हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान राम की भक्ति में पागल हैं, मदमस्त हैं, पागल। भक्तों ये बात सही है, जब तक हम भगवान की भक्ति में पागल नहीं हो जाएंगे तब तक हमें भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को पाना चाहते हो सबसे पहले पागल होना पड़ेगा। हमारे शिक्षा गुरु ने एक बार हमें बताया था कि आपको यदि भगवान के धाम में जाना है तो आपको संसार के लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए जो अभक्त है। बोले सर्टिफिकेट? कौन सा सर्टिफिकेट? बोले संसार के लोग जब तक आपको पागल का सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक आप भगवान के धाम में नहीं जा सकते हो। इसका अर्थ यह है कि जब इस जगत के लोग आपको पागल नहीं बोल देंगे तब तक आप भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इतनी भक्ति करनी है भगवान के नाम में, इतना झूमना है, इतनी कथा सुनना है ताकि जगत के लोग कह दे ये पागल हो गया, और कह दिया तो समझ लीजिए भगवान के धाम का रास्ता खुल गया। पागल उन्मत्तवत, ये साधारण भक्तों की बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर भक्त बनकर संसार को भक्ति सिखाने के लिए आए तो वह भी उन्मत्तवत पागलों की तरह। चैतन्य महाप्रभु पागलों की तरह भगवान का नाम लेते थे, संकीर्तन करते थे। प्रबोधानंद सरस्वती प्रकाशानंद सरस्वती उनको कहते थे कि तुम और मैं दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, हम दोनों सन्यासी हैं, और सन्यासी का धर्म है एक जगह पर बैठकर भगवान का नाम जपना, ऐसे पागलों की तरह क्यों नाम जपते हैं? यहां भी कुछ लोग कहते होंगे अरे भगवान का नाम ध्यान तो एक जगह पर बैठकर लेना चाहिए, ये लोग रास्ते में घूमते घूमते पागलों की तरह क्यों नाचते हैं? भगवान को पूछा, चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं मेरे गुरुजी के पास गया था और गुरुजी को जाकर कहा कि मुझे वेद शास्त्र का पठन पाठन करना है, यजन याजन करना है, आप मुझे वेद शास्त्र का ज्ञान दो। तब चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान क्या कहते हैं, गुरु मोहे मूर्ख जानी करील शासन। मैं गुरुजी के पास गया तो मेरे गुरुजी ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो, तुम्हें ये वेद और शास्त्र याद रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि कलयुग की बुद्धि, कलयुग में क्या वेद शास्त्र याद रहेगा, परसों दोपहर को कौन सी सब्जी खाई वह भी याद नहीं है, वेद और शास्त्र क्या याद रखेंगे। तुम्हें वेद और शास्त्र याद नहीं रहेगा, इसलिए वेद और शास्त्रों का सार जो है भगवान कृष्ण का नाम। समस्त वेदेषु दृश्यत, सभी वेदों को देखने के बाद ये हरे कृष्ण भगवान का नाम ही सभी वेदों का सार है। तुम एक काम करो, भगवान का नाम जपो, यही वेदों का सार। गुरुजी ने मुझे मंत्र दिया और उस दिन से मैं इस मंत्र को जपता गया, लेकिन जैसे जैसे मैं मंत्र जपने लगा संसार से वैराग्य होता गया, भगवान में अनुराग हुआ, संसार से वैराग्य हुआ, पत्नी बच्चों को भूलने लगा, अपने घर काम धंधे बिजनेस को भूलने लगा, और धीरे धीरे पागल जैसा होता गया। फिर से मैं मेरे गुरुजी के पास गया, गुरुजी आपने मुझे कैसा मंत्र दे दिया, किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, ये कैसा मंत्र दिया, इस न जाने इस मंत्र में कितनी शक्ति है, जपिते जपिते नाम करील पागल, जैसे जैसे मैं जपते जा रहा हूं वैसे वैसे मैं पागल होते जा रहा हूं, अब मेरा कुछ करो, लोग मुझे पागल कह रहे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे गुरुजी ने तब इतना ही कहा, अच्छा तुम ये महामंत्र जपते जपते पागल से हो रहे हो? बोले हां गुरुजी। तब बेटे यह महामंत्र वास्तव में तुमको पूरा पूरा फल दे रहा है। ये महामंत्र जपते जपते जो पागल हो जाए वही भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार पागलों की तरह संसार में कीर्तन करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान मिल जाएंगे। उस दिन से ये नाम जप रहा हूं। पागल होना है, उन्मत्त होना है। पागल हुई मीराबाई भगवान के नाम में, मेरे तुत गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। पागल हुई, बिना पागल में नहीं भगवान नहीं मिले। पागल हुए नरसिंह मेहता, पागल हुए सुखदेव गोस्वामी। इस प्रकार शिवजी भी उन्मत्तवत पागलों की तरह, यह भी एक गुण है। हम तो थोड़ा नाचना होता है तो कितनी शर्म कितनी लज्जा आती है। अभी कुछ देर के बाद कीर्तन होगा तो कुछ लोग शर्माते हैं, और कई जगह पर फिल्मों के गाने पर नाचना है तो वहां शर्म नहीं करते हैं। भगवान के नाम पर नाचने में लज्जा आती है। वो कभी भगवान को नहीं पाएंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्मत्तवत लज्जा छोड़नी होगी। शिवजी ने लज्जा छोड़ दी, कहां तक? यहां तक हमारे भोलेनाथ वृंदावन में गए, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला चल रही थी। भोलेनाथ ने कहा कि मुझे रासलीला में भाग लेना है। गोपियों ने कहा तुम नहीं ले सकते हो। क्यों? रासलीला में मात्र स्त्रियों को ही प्रवेश है। बोले कोई बात नहीं, मैं स्त्री बन जाऊंगा। तब भोलेनाथ गोपी का वस्त्र पहन लिए, गोपी बन गए और उन्मत्तवत पागलों की तरह भगवान के साथ रासलीला में भाग लिए। इसका प्रमाण आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव वंशी वट के बाजू में है। तो ये शिवजी का गुण है। इस प्रकार अनेक दोष गिनाते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो शिवजी के अनेक गुण प्रकट हो रहे हैं। शिवजी से यह गुण लेना है, हमें भी उन्मत्तवत भगवान की भक्ति करनी है। उन्मत्तवत नग्न व्युक्त, और ये नंग धड़ंग रहता है, इसे कपड़े पहनने का कोई ढंग नहीं है। ये दक्ष प्रजापति अपने दामाद शिवजी को दोष बता रहे हैं। इसे वस्त्र पहनने का कोई ढंग नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। बोले ये भी एक गुण है, वैराग्य की निशानी है। कुछ लोग तो अपने वस्त्र को बार बार ठीक करते हैं, ऐसे करते हैं। अब जिसकी अपने वस्त्रों से आसक्ति नहीं गई वो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है? ये भी एक गुण है। शिव जी को वस्त्र में कोई आसक्ति नहीं है, मृग चर्म पहन लेते हैं, बांध देते हैं। केश हसन और व्युक्त केश, और बाल बिल्कुल बिखरे हुए रहते हैं। ये कभी सलून में नहीं जाता है, अपने बाल नहीं कटवाता है, बाल में न तो तेल डालता है ना कंघी लगाता है। दक्ष प्रजापति दोष बता रहे हैं, परंतु ये शिवजी के गुण है। आज तो लोग अपने बालों में कितना मेहनत करते हैं, शैम्पू डालते हैं, कंडीशनर डालते हैं, और उसमें भी कितना कंघी लगाते हैं, और उसमें कलर, यहां तो पता नहीं हमारे मुंबई में तो कलर के डलवाते हैं, और कैसे कैसे न जाने आज तो कैसी कैसी स्टाइल हो गई है, स्पाई कट और ये कट और वो कट, अनेक। आज तो आपको नहीं पता होगा बाल की जो स्टाइल है, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं और ऐसे ऐसे लंबे ऐसे खड़े होते हैं, जैसे किसी को इलेक्ट्रिक का शॉर्ट लग गया है और बाल खड़े हो जाते हैं। आज जो पुरुष लोग हैं वो बाल अपने लंबे कर रहे हैं। वो क्रिकेटर में है ना कोई धोनी, लंबे लंबे बाल, और माताएं बालों को काटती जा रही है, अद्भुत फैशन। ये पुरुष लोग अपने बाल लंबे करते जा रहे हैं और माताएं बाल को कटवाती जा रही है। यद्यपि माताओं के, स्त्रियों के बाल लंबे होने चाहिए, पुरुषों के छोटे होने चाहिए, परंतु पुरुष लोग बाल बढ़ा रहे हैं और माताएं बाल कम कर रही हैं। और माताओं को कान में बाली पहननी चाहिए, नाक में धनी पहननी चाहिए। माताओं ने अब ये निकाल दिया, अब पुरुषों ने शुरू किया है। अब पुरुष लोग डालते हैं कान में नाक में। माताओं को साड़ी पहननी चाहिए स्त्रियों को, तो अब जींस पैंट और टी शर्ट शुरू कर दिया है। और पुरुषों ने बरमूडा शुरू कर दिया है। पता नहीं चलता है, कभी कभी तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है ये स्त्री है या पुरुष है। और वास्तव में क्या पता आज का फैशन, पुरुष जो है वो स्त्री जैसा दिखना चाहती है और स्त्री पुरुष जैसा दिखना चाहता है। हमें ऐसा ही लगता है कि ये स्त्री जो है अपने स्त्री के शरीर में संतुष्ट नहीं है, पुरुष बनना चाहती है। और पुरुष जो है, बहुत विचार करोगे तो ऐसा लगेगा लंबे बाल हैं, कान में बाली हैं, नाक में यहां 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 सब जगह पर, तो ऐसा लगता है आपको ये नया स्टाइल आया है। बता दो, आज ऐसा स्टाइल आया है बिल्कुल टाइट पैंट पहनना, एकदम टाइट जींस, एकदम शरीर से एकदम टाइट। हमें तो दया आती है कि बेचारा कितने गर्मी में मरता होगा। और पहली बार देखा तो मुझे प्रश्न हुआ कि इसने जींस पहना है कि कपड़े को बांधकर फिर सिलाई मारी है, मशीन के ऊपर सुलाकर फिर पैक किया है, क्योंकि इतना टाइट तो पहना भी नहीं जा सकता है। तो जो पहले के जमाने में स्त्रियां पहनती थी चूड़ीदार, अब ये पुरुष लोग पहनने लगे हैं। और सब कुछ देखने के बाद लगता है कि ये पुरुष स्त्री बनना चाहता है और स्त्री पुरुष बनना चाहती है। भगवान दोनों की सुन लेंगे और कहीं का नहीं रखेंगे। कुछ लोग कल सुबह तक समझ जाएंगे और वो रास्ते वाले बना देंगे, न पुरुष न स्त्री। जो लोग इस प्रकार से प्रकृति से विरुद्ध, संस्कृति से विरुद्ध जाते हैं, प्रकृति के द्वारा उसे दंड मिलता है। खैर, यहां पर दक्ष प्रजापति कह रहे हैं व्युक्त केश, इसको बाल बनाने का भी ढंग नहीं है। बाल जो, जिस बाल को अपवित्र माना जाता है, बाल यदि भोजन में पड़ गया तो भोजन अपवित्र हो जाता है। बाल को यदि काट दिया किसी ने तो स्नान करना पड़ता है और उस बाल के पीछे घंटों भर अपने बिगाड़ते रहते हैं। वास्तव में अपने बाल के प्रति ध्यान न देना एक गुण है, शिव जी का यह गुण है व्युक्त केश। और हसन रुदन, और ये कभी भी हंसने लगता है और कभी भी रोने लगता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। दक्ष प्रजापति शिव जी को कभी भी हंसना कभी भी रोना, वास्तव में ये भी एक भक्त का गुण है। बड़े बड़े भक्तों में ये देखा गया है। प्रहलाद महाराज के विषय में आया है, क्वचित हसति क्वचित रुदति। प्रहलाद महाराज बच्चों के साथ बैठते थे तो अचानक कभी कभी रोने लगते थे और बैठे बैठे कभी कभी अचानक हंसने लगते थे। क्यों? क्योंकि होते तो थे सब लोगों के साथ बाहर, परंतु अंदर से वे भगवान का स्मरण करते थे। प्रहलाद महाराज अंदर से भगवान की लीला का, भगवान की कथा का स्मरण करते थे, और उस कथा में जब भगवान का विरह हो जाता था तब वे अंदर से रोने लगते थे। कभी कभी अंदर का भाव बाहर प्रकट हो जाता था, क्वचित रुदती, और उसी प्रकार कभी कभी हंसने लगते थे। ये भी एक गुण है। वास्तव में ये बड़े बड़े गुण भगवान ऋषभ देव, जड़ भरत, दत्तात्रेय, बड़े बड़े महापुरुषों में ये गुण पाए गए हैं। तो इस प्रकार दक्ष प्रजापति दोष गिना रहे हैं, परंतु शिव जी के अद्भुत गुण हैं। चित्ता भस्म कृत स्नान, और ये अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाता है। और कृत स्नान, स्नान पानी से करना चाहिए, परंतु ये शमशान की चिता की भस्म से स्नान करता है। वास्तव में शिवजी अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं जानते हैं? कुछ लोग शिवजी के भक्त हैं फिर भी नहीं जानते होंगे। वास्तव में शिवजी के सबसे बड़े भक्त तो हम हैं, इतना सारा जानते हैं प्रभुपाद जी की कृपा से। शिवजी अपने शरीर पर भस्म इसलिए लगाते हैं ताकि शिवजी के मन में वैराग्य निरंतर रहे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये चार चीज को हम मनुष्य को रोज देखना चाहिए। सुबह उठकर ऑफिस में जाने से पहले किसी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और संसार में लोग कितने पीड़ित हैं, कितने रोगी हैं, प्रसव की कितनी वेदना होती है, इसका दर्शन करो। और अपना दिन का काम प्रारंभ करने से पहले शमशान में जाओ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनका दर्शन करो, तब जाकर ये वैराग्य टिकेगा। नहीं तो वैराग्य टिकता नहीं है। देखना चाहिए कैसे व्यक्ति मरता है। और एक दिन हमें भी शमशान में आना है, हमें भी, हम सबको एक ना एक दिन मरना है और शमशान में जाना है। एक बार एक चोर था, घूमते घूमते वह चोर किसी गांव में गया, परंतु गांव में चोरी करने का अवकाश नहीं मिला। तब वह चोर किसी साधु की कुटिया में गया, और साधु की कुटिया में तो क्या होता है, एक मग होता है, एक बाल्टी होती है, थोड़ा बहुत सामान होता है। चोर ने सोचा चलो जो भी मिला, साधु की कुटिया में जाकर चोर ने वह चुरा लिया और भागा। और साधु की नजर गई साधु चोर के पीछे, चोर आगे आगे भाग रहा है, साधु महाराज उसके पीछे पीछे पीछे, बहुत पीछा किए बहुत पीछा किए, परंतु चोर इतना तेज गति से भागकर चला गया, ये साधु उसे पकड़ नहीं पाए। जब साधु इसे पकड़ नहीं पाए तब शमशान में जाकर बैठ गए। कई दिनों तक बैठे। किसी ने जाकर पूछा कि महाराज आप शमशान में क्यों बैठे हो? बोले मेरे आश्रम में चोरी हो गई है। बोले तुम्हारे आश्रम में चोरी हो गई तो शमशान में बैठने से क्या लाभ मिलेगा? बोले एक ना एक दिन चोर यहीं पर तो आने वाला है, उस दिन मैं उसे देख लूंगा। एक ना एक दिन, भले कितना भी चुराया, कितना भी प्राप्त किया, कितना भी एकत्रित किया, अंत में एक ना एक दिन तो यहीं पर आने वाला है। भक्तों ये कथा हमें सिखाती है, कितना भी अर्जन कर लो, कितना भी प्राप्त कर लो, एक ना एक दिन तो हमको राख हो जाना है, ये शरीर राख बन जाएगा। शिवजी चिता की राख इसलिए लगाते हैं, याद करते हैं मरना है भाई, इसलिए भजन करो। हमें भी थोड़ी राख रखनी चाहिए, हमको एक दिन ये मिट्टी बनना है। तो राख होने से पहले इस देह से, इस शरीर से कुछ अच्छा काम कर ले, भजन कर ले, भगवान की भक्ति कर ले। दक्ष प्रजापति कहते हैं चिता की भस्म से स्नान करता है, ये बहुत बड़ा गुण है, ये भगवान का आदेश है। प्रेत स्त्रक निअस्थि भूषण, और प्रेत स्त्रक ये मुंडों की माला पहनता है। वास्तव में मुंड की माला, शिवजी के गले में जो मुंड है, और शिवजी मुंड की माला क्यों पहनते हैं? आज तो कुछ लोग अपने आप को शिवजी के भक्त कहते हैं, वे भी मुंड की माला पहनते हैं केवल दिखावे के लिए, शमशान की भस्म लगाते हैं केवल दिखावे के लिए। अंदर से कोई वैराग्य नहीं है, वैराग्य होता तो गांजा न पीते, वैराग्य होता तो भांग का नशा न करते, केवल अपने आप को शिवजी की तरह, शिवजी की अनुयायी दिखाते हैं। वैराग्य हृदय से होना चाहिए। प्रेतस्त्रक शिवजी अपने गले में मुंड की माला, खोपड़ी की मुंड की माला धारण क्यों करते हैं? क्योंकि शिवजी वैष्णवों से, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि उस भक्तों का विरह उसे बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए जब कभी भी संसार में किसी शुद्ध भक्त की मृत्यु हो जाती है, तब उस शुद्ध भक्त की जो मुंड है, खोपड़ी है, शिवजी अपने गले में रख लेते हैं, अपने गले में धारण कर लेते हैं। ये प्रेम है। और आज कुछ लोग अपने आप को शिव के भक्त कहते हैं और मुंड माला धारण करते हैं। पूछिए, जितना प्रेम शिवजी को अपने भक्त से है, वैष्णव से है, विष्णु के भक्तों से है, कि आपको उतना प्रेम है? नहीं, केवल दिखावा। शिवजी का अनुकरण नहीं करना चाहिए, शिवजी का अनुसरण करना चाहिए। शिवजी ने जो किया वह करने की जरूरत नहीं, शिवजी ने जो कहा है वह करने की जरूरत है। भक्तों की माला गले में रखते हैं। उस प्रसंग में आप सब लोग जानते होंगे, जब शिवजी और पार्वती का विवाह हुआ, बहुत सुंदर गृहस्थ जीवन बीत रहा था। गृहस्थी में दोनों रह रहे थे। एक दिन की बात, शिवजी कुछ काम के लिए बाहर गए, पार्वती अकेली घर पर थी। और उस समय नारद मुनि आए घर पर, आते हैं ना अतिथि आते हैं, नारद मुनि अतिथि बनकर आए। और नारद जी बैठे, स्वागत हुआ। नारद जी ने कहा कि आपका अभी अभी विवाह हुआ है, आपका गृहस्थ जीवन कैसे चल रहा है? बोले, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद से चल रहा है। बोले, कोई तकलीफ तो नहीं है अपने पतिदेव से? बोले, कोई तकलीफ नहीं। बोले, आपके पति पत्नी के बीच में कोई पर्दा तो नहीं है? बोले, कोई पर्दा नहीं। मेरे पतिदेव अपनी सारी बात मुझे बता देते हैं और मैं भी अपनी सारी हृदय की बात अपने पति को बता देती हूँ, कोई पर्दा नहीं, हम लोग सुखी हैं। अच्छा, नारद जी ने कहा, अच्छा आप दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं, बहुत सुख से रह रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, आपके पति के गले में जो मुंड माला है वो किसकी मुंडी है? देवी पार्वती ने कहा, विवाह हुआ, बहुत दिन बीत गए, लेकिन आज तक मुझे पता नहीं चला किसकी मुंड धारण करते हैं। बोले, मुझे तो पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने भी मुझे नहीं बताया, आने दो घर पर, देख लूंगी। नारद जी ने कहा, अपना काम बन गया, नारायण नारायण करके निकल गए, झगड़ा लगा कर चले गए। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग अतिथि, कुछ अतिथि ऐसे होते हैं जो अच्छी गृहस्थी में आग लगा कर चले जाते हैं। असल में नारद मुनि ऐसे नहीं है, तो भक्त हैं। नारद मुनि के इस कार्य के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य था। नारद मुनि को सुखदेव गोस्वामी का जन्म कराना था, उस लीला शुक को इस पृथ्वी पर अवतरित कराना था, इसलिए प्रयोजन था। लेकिन नारद मुनि कहकर चले गए और ये देवी पार्वती क्रोधित हो गए, आने दो घर पर। और शिव जी अपनी ऑफिस से घर पर गए होंगे, रात को घर पर गए, पानी का भी नहीं पूछा। शिव जी समझ गए देवी जी का मूड कुछ ठीक नहीं है। शिव जी ने अपने हाथों से पानी पी लिया, बैठे, बोले, शिव जी समझ गए, लगता है कोई ना कोई यहां पर आया था। जब मूड ठीक नहीं था तो शिव जी ने कहा कि देवी, घर पर कोई आया था? लगता है आज कोई घर पर आया था। बोले, हाँ, नारद जी आए थे। बस समझ गया। जब कहा कि नारद जी आए थे, शिव जी सारी बात समझ गए, कुछ ना कुछ दिया सली लगाकर गए होंगे। बताओ क्या है, क्यों दुखी हो? बोले, शादी के इतने दिन हो गए और गले में ये जो चेन पहना है किसने दिया और कैसे पहना, आज तक मुझे नहीं बताया। ये तो अपनी भाषा में हुआ, उन्होंने कहा होगा ये किसकी मुंडी है, आज तक नहीं बताया, जाओ मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करती हूं। शिव जी तो मनाने लगे। वास्तव में गृहस्थ जीवन में यही तो एक आनंद है। गृहस्थ जीवन में दो आनंद है, एक तो अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाना और दूसरा अपने छोटे छोटे बच्चों के मुख से तोतली बोली में मम्मी और पापा सुनना। जब गृहस्थ जीवन में ये दो चीज नहीं तो गृहस्थी बनने से क्या फायदा है। साक्षात भगवान अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण इसी कार्य के लिए अपने धाम से इधर उतरे, अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए। क्योंकि भगवान के धाम में अपनी पत्नी कभी रूठती नहीं है। यहां पर आए, प्रिया यदि मान करे करे न भत्सन, वेद स्तुति हरे हरे मोर मन। भगवान ने कहा यदि कोई मेरी प्रिया मुझसे रूठ जाती है और रूठी हुई प्रिया को मनाने में मुझे उतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, इतना आनंद वेदों की स्तुति सुनने में नहीं आता है जितना आनंद रूठी हुई प्रिया को मनाने में आता है। ये एक सौभाग्य है गृहस्थ जीवन का। शिव जी मना रहे हैं अपनी पत्नी को, क्या हुआ प्रिय? बोले तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। शिव जी ने कहा भगवान के बाद यदि मैं किसी से प्रेम करता हूं तो प्रिय मात्र तुमसे करता हूं। सीखना चाहिए शिव जी से हम पतियों को कि अपनी पत्नी को ऐसा कहना है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं एक पति को एक दिन में कम से कम 12 बार अपनी पत्नी को आई लव यू कहना चाहिए कि देवी मैं आपसे प्रेम करता हूं। फिर भले नहीं करते हो, कहने में क्या कमी हो जाती है? कहने में कुछ घटता है नहीं। और वास्तव में पत्नी को यही चाहिए। पत्नी को बड़ा महल और श्रृंगार और धन इत्यादि नहीं, बस पति बाजू में बैठकर दो शब्द प्रेम से बोल दे, पत्नी खुश हो जाती है। परंतु आज का पति यह भी नहीं कर सकता है, दुर्भाग्य। प्रेम से दो मीठे बोल भी नहीं बोल सकता है। शिव जी से सीखना चाहिए, क्या कह दिया, भगवान के बाद यदि मैं किसी से प्रेम करता हूं तो प्रिय तुमसे करता हूं। और ये गले में जो मुंड माला देखती हो, प्रिय जब जब तुम्हारी मृत्यु हुई है तब तब भी मैं तुमसे उतना प्रेम करता हूं। तुम्हारी जितनी भी मुंडी है ये मैंने गले में धारण कर ली, गिन लो प्रिय जितनी मुंडी मेरे गले में है, उतने बार तुम मर चुके हो और उतनी बार तुम्हारा जन्म हुआ। प्रेम करता हूं भक्त के। तब आगे बहुत लंबी कथा है कि पार्वती ने कहा कि अच्छा इतनी बार मैं मर चुके हूं, पूरा गिन कर कहा 1, 2, 3, 4, और तुम एक भी बार नहीं मरे? बोले नहीं। बोले मैं इतनी बार मरती रही और आप एक भी बार नहीं मरे, इसका कारण क्या है? शिव जी ने कहा इसका कारण मैं अमर कथा जानता हूं, अमर कथा। बोले आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो? बोले करता हूं। तो आप ऐसा नहीं चाहते हो कि मैं भी आपकी तरह अमर हो जाऊं? बोले चाहता हूं। तो आप मुझे भी अमर कथा सुनाइए ना। शिव जी ने कहा सुनाऊंगा। बोले नहीं अभी सुनाओ। बोले अमर कथा सुनने के लिए योग्य स्थान चाहिए, योग्य पात्रता चाहिए, योग्य समय चाहिए। बोले नहीं अभी सुनाओ। तीन हट बहुत प्रसिद्ध है, राज हट, बाल हट और स्त्री हट। व्यक्ति को झुकना पड़ता है। पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करे, पराक्रमी हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, परंतु घर पर आता है तो अपना मुकुट पत्नी के चरणों में रखना पड़ता है। स्त्री हट। परंतु शिव जी ने कहा कि देखो योग्य समय आने पर मैं तुम्हें सुनाऊंगा। और आगे फिर कथा जानते हैं, शिव जी अपनी पत्नी पार्वती को अमरनाथ में यहीं पर लेकर आए, डमरू बजाकर सभी जीवों को उड़ा दिए, कथा सुनाई। और वह कथा एक शुक ने सुन ली, शिव जी को पता चला, त्रिशूल लेकर शुक के पीछे दौड़े और वह शुक वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। और 12 या 14 वर्ष के बाद प्रसव हुआ और सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ। खैर मैं तो यह कह रहा था, शिव जी अपने गले में मुंड माल धारण करते हैं, भक्तों की मुंड है, भक्तों से प्रेम करते हैं, वैष्णवों से प्रेम करते हैं, वैष्णवों को आदर देते हैं। पद्म पुराण में कथा है, एक बार देवी पार्वती और शिव नंदी बैल के ऊपर सवार होकर जा रहे थे और शिव जी ने अचानक अपने बैल को रोक दिया और प्रणाम किया। पार्वती ने पूछा प्रभु यहां तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है, न कोई भगवान है, न कोई व्यक्ति है, आपने किसको प्रणाम किया? तब शिव जी ने कहा कि देखो प्रिय, यहां पर 10,000 वर्ष पहले एक वैष्णव भगवान की भक्ति करता था। इस वृक्ष के नीचे बैठकर 10,000 वर्ष पहले एक वैष्णव भगवान की भक्ति करता था, इसलिए यह स्थान आज भी पवित्र है, इसलिए मैंने दंडवत प्रणाम किया। शिव जी बैठ गए, आगे चले, एक रेगिस्तान आया जिसमें रण प्रदेश, न वृक्ष न कुछ नहीं। शिव जी वहां पर उतरे और वहां उतरकर शिव जी ने फिर से दंडवत प्रणाम किया। पार्वती ने कहा प्रभु वहां तो एक वृक्ष था, 10,000 वर्ष पहले किसी ने भजन साधन किया था इसलिए प्रणाम किया, यहां तो रेगिस्तान है, निर्जर वन है, आप यहां क्यों प्रणाम किए? शिव जी ने कहा कि इस स्थान में आज से 10,000 वर्षों के बाद एक भगवान विष्णु का भक्त वैष्णव आएगा और भगवान की भक्ति करेगा, उस वैष्णव को मैं आज से ही प्रणाम कर रहा हूं। यह है भक्तों के प्रति प्रेम, यह वैष्णव के प्रति प्रेम, शिव जी का यह प्रेम है, इसलिए वो मुंडमाल धारण करते हैं। हम लोग इतना प्रेम नहीं करते, इसलिए हमें धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुलसी की ही माला धारण कर ले बहुत बड़ी बात है। प्रेतस्त्रग नु अस्थि भूषण ये अशिव, और ये अमंगल स्वरूप है, ये शिव जो है अमंगल स्वरूप, ये दक्ष प्रजापति को अज्ञान के कारण ऐसा दिख रहा है। तो शिव तो मंगल के निदान है, मंगल के स्वरूप है, जिसको एक बार भी शिव जी का दर्शन हो जाता है वह कृतार्थ हो जाता है, माला माल हो जाता है। मंगल शिव का अर्थ ही होता है मंगल, कल्याण। मत मत जन प्रिय, और ये मतवाला है, रात दिन नशे में मदमस्त रहता है। दक्ष प्रजापति ने कहा कि ये जो है ये मतवाला रात दिन मदमस्त रहता है, नशे में रहता है। यह सुनकर कुछ लोग नशा करने लगे, शिव जी मतवाले हैं तो हम भी मतवाले। परंतु यह बात दक्ष प्रजापति ने कही है और दक्ष प्रजापति की बात सुनने योग्य नहीं है, और यदि सुनना भी है तो सरस्वती की बात, सारस्वत अर्थ सुनिए। यदि शिव जी मतवाले हैं, हां है, परंतु शिव जी किसका नशा करते हैं? शिव जी किसी भांग का, चरस गांजे का और किसी भी प्रकार के तमोगुणी व्यसन नहीं करते हैं। शिव जी को नशा है किसका? भगवत कथा का, भगवान की कथा का नशा है शिव जी को, भांग का नशा नहीं है। संसार में कुछ लोग भांग पीते हैं, हम कहते हैं आप भांग क्यों पीते? बोले शिव जी पीते थे। बोले शिव पुराण पढ़ लिया, लिखा है शिव पुराण में भांग पिया? कभी नहीं। भागवत में कहीं भी नहीं लिखा शिव जी ने भांग पिया। संसार के लोग स्वयं इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं और कहते हैं शिव जी करते हैं इसलिए हम लोग करते हैं। शिव जी महान वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, वो कभी भांग नहीं पीते हैं, वो कभी गांजा नहीं पीते हैं। संसार के लोगों को स्वयं यह पीना है, स्वयं यह व्यसन करना है, इसलिए शिव जी का नाम दे रहे हैं, कभी नहीं किया। हां शिव जी ने अपने जीवन में एक दिन विष पिया था, यह सत्य बात है। यदि आपको शिव जी का अनुकरण ही करना है विष पी लो, मूर्ख कही के विष नहीं पिएंगे, गांजा पिएंगे, भांग पिएंगे, पीना ही है तो विष पी लो। जगत विदित सब लोग जानते हैं समुद्र मंथन में जब विष निकला तो शिव जी ने पी लिया। परंतु एक घटना, एक इतिहास बताइए शिव जी ने भांग पिया हो, शिव जी ने गांजा पिया हो। शिव जी कभी नशा नहीं करते हैं। और जो लोग यह कहते हैं कि शिव जी भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, इसलिए हम लोग ये करते हैं, ये सबसे बड़े अपराधी हैं, अधर्मी हैं, पापी हैं, क्योंकि भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। आज के समाज में बड़े बड़े धर्मवेत्ता अपने आप को धार्मिक मानते हैं, और बड़े बड़े भाषण देते हैं और स्वयं गांजा पीते हैं, सबसे बड़े अधर्मी, धर्म की आड़ में अधर्म कर रहे हैं। वास्तव में शिव जी ने कभी ऐसा नहीं किया, परम शुद्ध पवित्र है। और जो लोग ऐसा कहते हैं वो दक्ष प्रजापति के पक्ष वाले हैं। शिव जी ने कहा, शिव जी को नशा है, परंतु किसका? भगवान की कथा का। यदि नशा करना ही है तो भगवान की कथा का नशा कीजिए, भगवान के नाम का नशा कीजिए, चरस गांजे और अफीन का नहीं। आप लोग कहोगे भगवान की कथा का नशा, हां भागवत में अनेक प्रसंगों में वर्णन है। भगवान विष्णु ने ध्रुव को कहा, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। ध्रुव ने कहा, प्रभु आपको देना है तो आपकी कथा दीजिए, आपके भक्तों के संग में बैठकर मैं आपकी कथा सुनता रहूं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे ध्रुव, ये जगत जो है आसित उलबणम, इस जगत में बहुत दुख है, बहुत क्लेश है, तुम कुछ मेरे से मांग लो सुखी होने के लिए। ध्रुव ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके भक्तों के बीच में बैठकर आपकी कथा सुनो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बोले संसार का दुख नहीं होगा? बोले थोड़ा भी दुख नहीं। कैसे? बोले प्रभु आपकी कथा जो है बहुत मादक है, प्रभु आपकी कथा में नशा है, नशा। और जब हम आपकी कथा सुनते हैं हम मतवाले हो जाते हैं। जगत में कुछ लोग नशा क्यों करते हैं? नशा करने का कारण बहुत चिंता होती है, बहुत टेंशन होता है, और चिंता के कारण, टेंशन के कारण नशा कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं और फिर मतवाले हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं। और जितनी देर तक वह नशा चढ़ता है उतनी देर तक संसार का दुख भूल जाते हैं, है ना? इसी के लिए नशा करते हैं, नशा करने का और कोई कारण नहीं है। नशा जगत के दुख को भूलने के लिए लोग नशा करते हैं। परंतु भक्तों, इस जगत के शराब का नशा कितने देर तक रहता है? एक घंटा, दो घंटा, पांच घंटा या दस घंटा, और ज्यादा नहीं रहता है। परंतु भगवान की कथा का नशा ऐसा है, यदि आप भगवान की कथा सुनोगे तो यह नशा जो है जीवन भर तक रहता है, जीवन भर तक व्यक्ति दुखों को भूलकर परम सुखी हो जाता है, यह है नशा। शिव जी भगवान की कथा का नशा करते हैं, नहीं तो रामायण में लिखा होता, एक बार त्रेता युग माई शंभु गए शराब की दुकान में, कभी नहीं। शंभु गए नशा करने, कभी नहीं। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, क्यों? क्योंकि राम कथा का नशा है, कथा सुनने के लिए। शिव जी भगवत कथा का नशा, इसलिए संसार की ये तुच्छ नशे को छोड़कर हम सबको भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान की कथा सुनकर ही हम सब लोग संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। आगे दक्ष प्रजापति कहते हैं, पति प्रथम भूतानाम तमो मात्रात्मकम, ये मेरा दामाद तमो मात्रात्मकम, तमोगुणी है। शिवजी को तमोगुणी कहा। संसार में भी कई लोग शिवजी को तमोगुणी कहते हैं, परंतु ये बिल्कुल गलत बात है। सत्य बात यह है, शिवजी तमोगुणी नहीं है, शिवजी तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है। शिवजी कभी भी, शिवजी शुद्ध सत्व गुण में स्थित रहते हैं। त्रिगुणिया विषया वेदा निसत्रे गुणियो भवार्जुन निर्दंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, इस जगत में माया के तीन गुण हैं, सत्व रजस और तमस। भगवान की प्राप्ति करने के लिए सतो गुण से भी ऊपर उठकर शुद्ध सत्व में स्थित होना है, और शिवजी निरंतर शुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं। परंतु भगवान की सेवा करने के लिए कभी कभी सृष्टि का प्रलय करने के लिए तमोगुण की आवश्यकता होती है। तो जब संसार का प्रलय करना होता है तब शिवजी तमोगुण को स्वीकार करते हैं, वे तमोगुणी नहीं हो जाते हैं, तमोगुण को स्वीकार करते हैं। तमोगुणी हो जाना और तमोगुण को स्वीकार करना जमीन आसमान का अंतर है। क्रोध को स्वीकार करना और क्रोधी हो जाना जमीन आसमान का अंतर है। क्रोध को स्वीकार करने का अर्थ यह है कि कुछ काम करने के लिए कभी कभी गुरुजी जो होते हैं अपने शिष्य को प्रगति कराने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए शिष्य के दोष को देखकर क्रोध करके उसको दंड देते हैं, तब गुरुजी तमोगुण में आविष्ट नहीं हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रोध ने उसको घेर लिया है, नहीं, क्रोध उनके वश में होता है। परंतु हम जब क्रोधित होते हैं तब हम क्रोध के वश में हो जाते हैं, है ना, हम पूरे कांप जाते हैं और हम क्या बोल रहे हैं वो हमें भी नहीं पता होता है, तो हम क्रोध के वश में हो जाते हैं। परंतु जो महात्मा होते हैं वे क्रोध को वश में रखते हैं। कभी कभी हम तमोगुण के वश में हो जाते हैं, परंतु शिव जी जो है तमोगुण को अपने वश में रखते हैं और जब इसकी जरूरत पड़ती है तब तमोगुण स्वीकार करते हैं। शिव जी का काम है प्रलय करना, इस संसार में तोड़फाड़ करना। तो प्रलय जो है सत्वगुण से नहीं हो सकता है, सत्वगुण माने शांति, शांति से प्रलय नहीं, प्रलय के लिए तो उत्पात। और इसलिए शिव जी कभी कभी तमोगुण को स्वीकार करते हैं, तो ये भी शिव जी का एक महान गुण है। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने शिव जी के अनेक दोष बताए, परंतु वास्तव में शिव जी में एक स्वप्न में भी दोष हो नहीं सकते हैं, ये समस्त गुण है और इन गुणों को समझना चाहिए। तो मान लो उस सभा में दक्ष प्रजापति शिव जी के दोष बता रहे हैं और उतने में ही कोई कह दे कि आप शिव जी में इतने दोष देख रहे हो तो पहले नहीं देखा था, अपनी बेटी का विवाह इस शिव जी के साथ क्यों कराया, तब दक्ष प्रजापति 16वें श्लोक में कहते हैं, च उदते परमेष्ठिन, ये मेरे बाप ब्रह्मा ने करवाया, मैं तो ना ही कह रहा था, मैं तो मेरी बेटी का विवाह इस लफंग के साथ नहीं करने वाला था, परंतु ये ब्रह्मा जी ने बताया इसलिए मैंने करवाया, ब्रह्मा जी के कहने पर। तो इस प्रकार दक्ष प्रजापति एक के बाद एक शिव जी के ऊपर लांछन लगाते गए, शिव जी के दोष बताते गए। मैत्रेय मुनि ये कथा विदुर जी को सुना रहे हैं और उस समय विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को कहा कि प्रभु जब दक्ष प्रजापति ने इतना कुछ कह दिया, बरस गए, इतना क्रोध किया, तो शिव जी ने कुछ दक्ष प्रजापति को नहीं कहा? दक्ष प्रजापति के इस प्रकार कहने पर शिव जी ने क्या किया? तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच विनिध्येवं सगीरिशं प्रतीपमवस्थितं दक्षोथाप उपस्पृश्य क्रुद्धशब्दं प्रचक्रमे। दक्ष प्रजापति के क्रोध करने पर शिव जी ने क्या किया? कहते अप्रतिम अवस्थितम, शिव जी ने अप्रतिम एक भी प्रतिकार नहीं किया, थोड़ा भी प्रतिकार नहीं, चुपचाप अवस्थितम निश्चल होकर एकदम चुपचाप शिव जी बैठे रहे। दक्ष प्रजापति के इस क्रोध का, यह सब गालियों का, यह दोष का शिव जी पर थोड़ा भी असर नहीं हुआ। अप्रतिम किस प्रकार? अजात शत्रुवत, वास्तव में शिवजी जो है अजात शत्रु। शिवजी इस दुनिया में किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते हैं, भले शिवजी को दक्ष प्रजापति अपना शत्रु मान रहा था, परंतु शिवजी अजात शत्रु, जिसका संसार में कोई शत्रु ना हो। और दक्ष प्रजापति शिव जी को सुना रहे थे, कुछ बुरे वचन कह भी रहे थे, तो शिव जी अपने मन में यही सोच रहे थे कि भाई मैंने कुछ बुरा काम किया होगा इसलिए ये मुझे बुरे वचन सुना रहे हैं, इसमें दक्ष प्रजापति का कोई दोष नहीं है। शिव जी ने बहुत सुंदर अपने आचरण से जगत को सिद्धांत बताया, इस जगत में जब कोई हमें डांट रहा हो, जब भी कोई हमें गाली दे रहा हो और हमारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार कर रहा हो, हमें कभी भी उसका प्रत्युत्तर नहीं करना चाहिए, हमें उसके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं। आज तो कुछ लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं तो हम भी गलत व्यवहार करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं, क्योंकि इस संसार में मानो कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर भी रहा हो तो जो गलत व्यवहार कर रहा है उसका दोष नहीं है, दोष हमारे अपने कर्मों का है, अपना कर्म है। काकभूषणी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भरता। इस संसार में काहू न को सुख दुख कर दाता, इस संसार में सुख देने वाला कोई नहीं है और दुख देने वाला संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं। बोले तो ये सुख और दुख कौन देते हैं? कहते निज कृत कर्म, अपने ही किए हुए कर्म, पूर्व जन्म में या पूर्व में अपने द्वारा जो बुरे कर्म हुए हैं वही बुरे कर्म दुख बनकर हमारे जीवन में आते हैं। हो सकता है वह बुरे कर्मों का फल किसी के माध्यम से मिल रहा हो, परंतु जिसके माध्यम से हमें दुख मिल रहा है उसे हमें कभी भी दोष नहीं देना चाहिए, अरे उसे तो धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि दोष का कारण वो व्यक्ति नहीं, दोष का कारण तो हम खुद हैं, हमारे कर्म ऐसे हैं, हमारे अपने कर्म। इसलिए जीवन में हमारे साथ कोई कैसा भी सुलूक करे, कोई कैसा भी व्यवहार करे, बुरे से बुरे व्यवहार करने वाले के प्रति भी शुद्ध अच्छा भाव होना चाहिए, नम्र भाव होना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में एक संत हुए जिसका नाम था एकनाथ, संत एकनाथ पंडरपुर नामक धाम में एक बहुत सुंदर नदी है जिसका नाम है चंद्रभागा नदी। शीत काल में ठंडी की मौसम चल रही थी, ठंडी की ऋतु में संत एकनाथ चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए गए। नदी का पानी ठंडा है, स्नान किए और स्नान करके जब वापस लौटे, भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में तीन मंजिल एक बिल्डिंग थी जिसमें तीन मंजिल थी, तीसरी मंजिल से एक मुसलमान सुबह सुबह कुल्ला करने के लिए अपने मुख में पानी था, संत एकनाथ वहां से निकले, मुसलमान ने अपने मुख से उस पानी को उस संत के ऊपर थूक दिया, संत के ऊपर पानी गिरा, बिगड़ गए। संत गए फिर से चंद्रभागा नदी में स्नान किए, वापस दर्शन करने जा रहे थे तो मुसलमान ने फिर से पानी फेंका, फिर से अपवित्र हो गए, फिर से गए गंगा चंद्रभागा में स्नान करने। स्नान करके तीसरी बार आए, फिर से पानी फेंका, ऐसे करते करते 50 बार उस मुसलमान ने पानी फेंका अपने मुख से और 50 बार ये स्नान किए। 51वीं बार जब स्नान करके जा रहे थे ना, वह मुसलमान तीसरी मंजिल से नीचे उतरकर संत एकनाथ के चरणों में गिर गया। बोले महाराज मुझे क्षमा कर देना, मैंने 50 बार आपके ऊपर थूका लेकिन फिर भी एक बार भी आपने प्रत्युत्तर मुझे दोष नहीं दिया, प्रभु मैं आपका दोषी हूं, मैंने आपके ऊपर पानी फेंका है, मुझे क्षमा करना। बोले क्षमा तो मुझे करना है, आपने आज मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की है। संत एकनाथ ने कहा, बोले आपने आज मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की, बोले मैंने आप पर कृपा क्या की? तो उस संत ने इतना ही कहा कि मैं तो बहुत आलसी हूं, नदी में एक बार भी स्नान करने में मुझे आलस होती है, हे मुसलमान आपकी कृपा से आज मैंने चंद्रभागा में 50 बार स्नान किया, वास्तव में आपकी कृपा है। यह है भक्तों का स्वभाव, कभी भी किसी को दोष नहीं देते हैं, कभी भी। हमारे महाराष्ट्र में और एक संत हुए जिसका नाम था तुकाराम, सुना है आप लोगों ने संत तुकाराम का नाम। संत तुकाराम रात दिन भगवान की भक्ति करते थे, भगवान का नाम जप, भगवान का कीर्तन करना। और आप सब जानते हैं जो लोग भक्ति में लग जाते हैं उसके घर का काम जो है थोड़ा ढीला हो जाता है, फिर वह खेतीबाड़ी में इतना ध्यान नहीं देते हैं। एक दिन उसकी पत्नी क्रोधित हो गई, तुम कुछ करते नहीं हो, केवल वीणा बजाते रहते हो, भगवान का नाम लेते रहते हो, घर कैसे चलेगा, जाओ खेत में, गन्ने की फसल हो चुके हैं, गन्ने को काटकर घर पर लेकर आओ। बोले ठीक है कोई बात नहीं। संत तुकाराम खेत में गए, गन्ने को काटा, गन्ने की बोरी बनाई, अपने सिर पर चढ़ाकर घर की ओर आ रहे थे। रास्ते में कुछ बच्चे मिले, एक बच्चा आया कहा कि महाराज मुझे गन्ना खाने का मन हुआ है, एक गन्ना दीजिए ना। तुकाराम ने कहा लीजिए आपका ही, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत है? सब राम जी का है, ले लो। ले लिया। अब बच्चे का स्वभाव तो जानते हो, एक बच्चे को मिला तो 10 बच्चे आए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। रास्ते में सबको बांटते गए बांटते गए, घर पर पहुंचे तो एक गन्ना बचा, एक गन्ना बचा। पत्नी ने क्रोधी होकर कहा कि मैंने आपको भेजा था गन्ने की बोरी लाने के लिए, आप एक गन्ना लेकर आए। बोले खेत में से तो मैं बहुत सारा गन्ना लेकर निकला था, लेकिन रास्ते में कई लोग मिले और भगवान की संपत्ति बेचारे बच्चे के पेट में गया तो दे दिया, एक गन्ना बचा है। उनकी पत्नी को तो इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, वह गन्ना सुख तुकाराम के हाथ से ले लिया और एक जोर से मारा, और इतना जोर से गन्ना मारा गन्ने के 2 टुकड़े हो गए, इतना जोर से मारा। तब भी तुकाराम ने इतना ही कहा कि देखा भाग्यवान, भगवान हमारे ऊपर कितने मेहरबान है, गन्ना एक था हम 2 थे, भगवान की कृपा से 2 गन्ने हो गए, एक तुम खाओ और एक मैं खाऊं। यह है भक्तों का स्वभाव, कभी किसी को दोष नहीं देते हैं, दूसरे के ऊपर केवल कृपा करते हैं। जीवन में कभी दुख भी आता है तो केवल यही सोचते हैं कि ये मेरे कर्मों का फल है, मैंने कुछ ऐसा किया होगा, मैंने कुछ गलती की होगी, मैंने किसी का कुछ बुरा किया होगा, इसलिए आज मेरे साथ बुरा हो रहा है। हमें यही सोचना चाहिए, कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। शिव जी ने अप्रतिम अवस्थितम, कोई प्रतिकार नहीं किया और निश्चल बैठे रहे, और जब शिव जी कुछ नहीं बोले तो दक्ष प्रजापति और भड़का, और दक्ष अथ अप उपसृश्य क्रुद्ध शप्तुम प्रचक्रमे, दक्ष प्रजापति ने अपने हाथ में जल ले लिया और जल लेकर शिव जी को श्राप देना प्रारंभ किया। क्या श्राप दिया? अयम तु देव यजना, दक्ष प्रजापति ने सभी प्रजापतियों को कहा, सभी देवी देवताओं को कहा, अयम यह शिव देव यजना, यह देवताओं के यज्ञ में इंद्र उपेंद्र आदिर भीर भव, हे इंद्र हे उपेंद्र आप सब लोग कान खोलकर सुन लो, आज के बाद इस संसार में जितने भी देव यज्ञ हो गए उस देव यज्ञ की आहुति का फल सभी देवताओं को मिलेगा, लेकिन इस शिव को इस पागल को कभी भी नहीं मिलेगा, सहभागम न लभता देव देव गणाधम, क्योंकि ये अधम है। कह दिया आज के बाद इस शिव को कभी भी यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। भक्तों यहां पर जब कोई व्यक्ति यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का फल देवताओं को मिलता है, देवताओं से स्पृष्ट होते हैं। यज्ञात भवंति पर्जन्यो, पर्जन्यो अन्न संभव, गीता में भगवान कहते हैं यज्ञात, यज्ञ से बारिश होती है, यज्ञ से देवी देवताओं की शक्ति बढ़ती है।